तं देवं कंसचर्णरमर्दनं वसुदेवसुतं देवं कंसचर्णरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं अचूक्तिसन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वर पिसन् अचूक्ति सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वर पिसन् प्रकृतिं स्वामधीष्ठाय संभवाम्यात्ममाय प्रकृतिं स्वामधीष्ठाय संभवाम्यात्ममायया
यदि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्
अभ्युत्थानम धर्मस्य
तदात्मानं
सृजाम्यहम्
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे
जन्म कर्म च मे दिव्य देवाय
वेत्तितात्वतः
जन्म कर्म च मे दिव्य
देवं यो वेत्तितात्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति
मामेति सोऽधुन
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन
वीतराग भय क्रोध
मन्माया मामुपाश्रिता
वीतराग भय क्रोध
मन्माया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा
पूतमधावमागत
बहवो ज्ञान तपसा
पूतमद्भावमागत वसुदेवसुतं देवं कंसचर्णरमर्दनं वसुदेवसुतं देवं
कंसचर्णरमर्दनं
देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं
देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं
श्री राम जय राम जय जय राम
राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय
के प्रेम का विषय बहुत ही रहस्यमय है, इस पर कुछ भी कहना बड़ा कठिन काम है। भगवान के साथ जो प्रेम होता है वो वाणी का विषय नहीं है, प्रेम जो है वो हृदय की चीज है। और जिसके हृदय में प्रेम की जागृति है वही इस बात को समझता है कि प्रेम क्या चीज है। परंतु वाणी से तो वो भी नहीं कह सकता है, फिर भी समझाने के वास्ते लौकिक दृष्टांत देते हैं पर उससे पूरा समझ में नहीं आता। तुलसीदास जी ने कहा कि श्री राम और भरत जी का जो प्रेम है और उनके प्रेम का जो मिलन है वो कवि की वाणी का विषय नहीं है, उसको वाणी के द्वारा नहीं कह सकते। वह भगवान श्री राम और भरत के प्रेम का वर्णन नहीं कर सकती। जैसे दुनिया के लोगों को स्वाद का आनंद मिलता है पर उस आनंद का वर्णन स्वाद लेने वाला वाणी के द्वारा नहीं कर सकता, फिर भगवान के प्रेम का वर्णन तो हो ही कैसे सकता है। नारद जी कहते हैं कि प्रेम जो है वो नित्य नया बढ़ता ही रहता है, पीछे की ओर नहीं चलता। जो प्रेमी है, भगवत प्रेमी है, वह भी एक प्रकार से प्रेम के विषय का वर्णन वाणी के द्वारा नहीं कर सकता, फिर मेरे जैसा साधारण व्यक्ति उस प्रेम को कैसे कहे। फिर भी प्रेम की जो चर्चा है वो करनी अच्छी है। इस बात को लेकर आपकी सेवा में कुछ कहता हूं। प्रेम जो है वह जहां अपनत्व होता है, ममता होती है, वहां होता है। खास बात है, भगवान के साथ प्रेम कब होगा, वो जप करने से कि तप करने से कि एकांतवास होने से नहीं होगा, भगवान को अपना मानने से प्रेम होगा। जिसमें आत्मीयता होती है कि ये मेरा है, वहां प्रेम अपने आप पैदा होता है। और प्रेम के लिए भगवान के समान और कोई पात्र नहीं है कि जिससे प्रेम किया जाए। बहुत अच्छी बात है, भगवान परम हितेशी है, दुनिया के दुनिया में उनके समान कोई हितेशी नहीं है। उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु कौ नाई। शिवजी पार्वती जी से बोलते हैं कि राम के समान हित करने वाला कौन है, जो हमारा गुरु है, आचार्य है, माता है, पिता है, बंधु है, कोई भी है, सब हित करते हैं, परंतु भगवान के समान तो हित वो भी नहीं कर सकते। इन सब के हित में कहीं न कहीं कोई न कोई स्वार्थ है। परमात्मा की प्राप्ति वाले पुरुष को छोड़ करके सब अपने स्वार्थ के बिना कोई बात तक नहीं करना चाहते। बात बात में स्वार्थ की तरफ ध्यान है। जैसे गिद्ध पक्षी की दृष्टि मांस पर रहती है, ऐसे स्वार्थी आदमियों की दृष्टि अपने स्वार्थ की तरफ सदा अटकी रहती है। कोई भी काम करते हैं तो पहले ये याद आता है कि इसमें मुझे क्या मिलेगा, मुझे इसमें क्या लाभ होगा। ये नहीं देखते कि अरे दुनिया को कितना लाभ होगा, दूसरों को लाभ के अंदर डूबता हुआ देखने वाले पुरुष तो केवल भगवान और भगवान के प्रिय भक्त ही है। कितनी अच्छी बात है, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करै सब प्रीति। देवताओं को देख लो, देवताओं को भगवान का राज्य नहीं सुहाया कि ये जंगल में चले जाएं तो बड़ा अच्छा है, हमारा काम बन जाए। उन्होंने सरस्वती को भेज करके मंथरा के द्वारा सब काम गड़बड़ करा करके राम जी के राज्याभिषेक में बाधा डाली। ऋषि मुनि आदि जो साधक लोग हैं वन में रहते हैं, वे भी कुछ न कुछ मन में भगवान से ये तो इच्छा रखते ही हैं कि भगवान हमारा कल्याण कर दें, कुछ न इच्छा है ही। उनमें कई भगवत प्राप्त पुरुष होते ही है, परंतु पहले उनके मन में इच्छा तो रहती ही है। और मनुष्यों में तो स्वार्थ बिखरा पड़ा है, तो सब ये लोग स्वार्थ से प्रेम करते हैं, परंतु हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। बिना कारण प्रेम करने वाले तो केवल भगवान है। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने उ प्रभु परमारथ नाही। हे नाथ, सब कोई अपने स्वार्थ के मीत है, मीत माने मित्र है, अपने स्वार्थ को लेकर मित्रता करते हैं। स्वार्थ को त्याग कर मित्रता करने वाला दो को छोड़कर तीसरा का नाम कहीं नहीं मिलेगा। एक तो बताया कि भगवान, भगवान के समान तो भगवान ही है, तो भगवान हमारे खास परम मित्र है, इस बात को हृदय में पक्का जमा लेना चाहिए। इसलिए हमको भगवान से प्रेम करना चाहिए। भगवान हमारे खास आत्मी है, क्योंकि आत्मा की दृष्टि से भगवान ही तो हमारी आत्मा है। अहम आत्मा गुड़ा केश सर्वभूताशय स्थित है। हमारे शरीर के मालिक पिता माता हैं, क्योंकि शरीर माता पिता का अंश है, उनसे मिला है, शरीर के मालिक पिता माता हैं, परंतु आत्मा के मालिक तो भगवान है। ऐसा मानने में कोई दोष नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि ममई वांशो जीवलोके, दोनों के वचनों से यही बात है। अब कोई कहे कि ये जीव ईश्वर का अंश है तो ईश्वर के टुकड़े हुए हैं क्या? ईश्वर का कोई टुकड़ा नहीं होता है, किंतु टुकड़े की तरह ही एक एक अंग अलग अलग दिखते हैं शरीरों के कारण से। आत्मा जो है वो ईश्वर का अंश है, अविनाशी है, उसका टुकड़ा हो ही नहीं सकता, उसका विनाश हो ही नहीं सकता। लेकिन टुकड़ों में बटे हुए शरीर के कारण से आत्मा के टुकड़े दिखते हैं। जैसे अज्ञानी आदमी को शरीर के मरने पर अपना मरना दिखता है, शरीर के बदलने को हम अपना बदलना मान लेते हैं, ऐसे ही शरीर के टुकड़ों को, अलग अलग टुकड़ों को हम अलग अलग आत्मा मान लेते हैं। ये तो अज्ञान की दृष्टि है। आत्मा तो नित्य है, उसमें कोई टुकड़ा है ही नहीं। ईश्वर अविनाशी, ऐसे आत्मा भी अविनाशी। ईश्वर चेतन है, ऐसे ये भी चेतन है। शरीर है ये जड़ है, आत्मा चेतन है। चेतन माने ज्ञान करने वाला, जड़ माने जो ज्ञान में आता है वो जड़ होता है। तो जानने वाला वो चेतन, वो जीवात्मा, और जानने में आने वाला पदार्थ वो जड़, वो आत्मा नहीं है। वो जानने वाला होने से चेतन है, इसलिए ये जीवात्मा मल रहित है, माया से रहित है, दोषों से रहित है। जीवात्मा शुद्ध स्वरूप, किंतु माया से संबंध जोड़ने के कारण से माया के दोष को अपना दोष मान लिया। जैसे लोहे को अग्नि से, अग्नि में तपा देने पर वो लोहा अग्नि रूप हो गया, अग्नि हो गया, ये जला गया, लोह से जल गया। वास्तव में लोहे का काम जलाने का नहीं है। ऐसे ही अज्ञान के कारण से अपने को माया के दोषों से जोड़ दिया तो अपने में दोष दिखिया है। वास्तव में ये मल रहित है, शुद्ध है, स्वाभाविक है। एक एक बात का यदि हम कारण ढूंढे तो आनंद ही आनंद है। स्वाभाविक आनंद तो आत्मा में है, इसलिए इसको सहज सुख राशि कहा है। सहज जो शब्द है वो बतलाता है कि वह आत्मा शुद्ध है, विकार के रूप में नहीं है। और सात्विक राजस तामस है, जो सुख है, ये सब विकार रूप है, क्योंकि ये माया का गुण है। सत्व रज तम और गुणों से अतीत है वो है जीवात्मा। भगवान का जैसा स्वरूप है उसके अंश का भी वैसा ही स्वरूप होगा, ना अलग से कहां से आएगा। इसलिए भगवान का जैसा स्वरूप सत चित निर्मल आनंद शुद्ध, ऐसे ही जीवात्मा का स्वरूप भी सत चित आनंद निर्मल और शुद्ध है। इस दृष्टि से अंश का अंशी के साथ प्रेम होना चाहिए। ये उसकी मूर्खता है कि ऐसे प्रभु को छोड़ करके संसार के माइक पदार्थों से प्रेम करता है। ये मूर्खता की पराकाष्ठा है। पराकाष्ठा माने बहुत बड़ी मूर्खता। यदि ये बात समझ में आ जाए तो भाई हम जानबूझ करके क्यों मूर्ख बने। कोई किसी को मूर्ख कह देता है तो उसे बुरा मालूम देता है कि हमको मूर्ख क्यों कह दिया। अब बताओ, दिन रात जो आदमी मूर्खता में ही रह रहा है उसको मूर्ख नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। ऐसे हम लोगों की क्रियाएं मूर्खतापूर्ण हो रही है। विवेक पूर्ण होती तो हमको मूर्ख थोड़ी कहते हैं। अज्ञता कहो, मूर्खता कहो, अविवेकपना कहो, एक ही बात है। यदि यह अज्ञान न हो तो हमारी सारी क्रिया ज्ञान के अंदर होती। जैसे ईश्वर की और महापुरुषों की जो क्रिया होती है वो सारी क्रिया विवेकपूर्ण होती, विवेकपूर्ण होती है। हम लोगों को ये विचार करना चाहिए कि ईश्वर को छोड़कर किसी के साथ में हम स्वार्थ को लेकर प्रेम करते हैं तो ये नीचे दर्जे का प्रेम है, घृणित प्रेम है। उसका आदर न तो यहां है न परलोक में है। इस बात को समझ करके संसार के विषय भोगों से प्रेम हटा करके भगवान से प्रेम करना चाहिए। ये अभी मौका है, फिर नहीं है। एक जो स्वाभाविक प्रेम होता है उसको सहज प्रेम बोलते हैं, ये बहुत ऊंचे दर्जे का है। इसमें दूसरी तरफ हम ख्याल करें, स्वार्थ की तरफ ख्याल करें, गुणों की तरफ ख्याल करें, सुंदरता की तरफ ख्याल करें, प्रभाव की तरफ ख्याल करें, तो भी भगवान के समान न तो कोई गुणी है, न कोई प्रभावशाली है, न कोई सुंदर है, कुछ भी तो नहीं है भगवान के समान। सारी दुनिया का जो सौंदर्य है वो इकट्ठा करके भगवान के सौंदर्य के सामने लाकर खड़ा करो तो उसके सामने एक कला भी नहीं है। दुनिया का सौंदर्य उसके एक अंश के सामने टिक भी नहीं सकता है। ऐसे श्याम सुंदर भगवान, उनको आप विष्णु मान लो, राम मान लो, कृष्ण मान लो, कुछ भी मान लो, परंतु उनसे अलग दुनिया में सौंदर्य कहां मिलेगा। उससे अलग यदि आपको कोई दुनिया में सुंदरता दिखती है तो ये मूर्खता है। गीता में भगवान ने अपनी प्राप्ति के साधनों में कैसी बढ़िया बात कही, असक्ति रणभिष्वंग है, पुत्र दार गृहादिशु नित्यंच समचित्तत्वम इष्टानिष्टोपपत्तिषु। हे अर्जुन, मुझ परमात्मा में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति ज्ञान का बड़ा उत्तम साधन है। अव्यभिचारिणी भक्ति माने जिस भक्ति में व्यभिचार दोष न हो। कि भक्ति में व्यभिचार दोष क्या है? भक्ति माने विशुद्ध प्रेम, और अव्यभिचारिणी भक्ति माने विशुद्ध भक्ति जिसमें कोई दोष न हो। तो दोष क्या है? संसार के साथ हम संबंध रखते हैं, संसार की कामना रखते हैं, ये इसमें व्यभिचार दोष आता है। भगवान को छोड़ करके किसी में भी प्रेम न हो, किसी में भी भक्ति न हो, किसी के लिए भी न हो, ऐसी मुझ परमात्मा में जो अनन्य भक्ति हो और विशुद्ध भक्ति हो और एकांत देश का सेवन हो, जन समूह में अरति हो, अरति माने प्रीति का अभाव। तात्पर्य है कि किसी में मुझ परमात्मा को छोड़कर और किसी में भी प्रीति न हो, इस बात को खुलासा करके ये बात समझाई है। ऐसी भक्ति भगवान में होनी चाहिए और विचार करना चाहिए थोड़ा गहरे ढंग से। यदि बात समझ में आ जाए कि भगवान में प्रेम, विशुद्ध प्रेम, परम प्रेम, अनन्य प्रेम, पूर्ण प्रेम होना चाहिए, तो कितना जल्दी हमारा काम हो सकता है। जिन शब्द से आप समझ लें उसी बात से शीघ्रता करें, क्योंकि हमारे पास समय का साधन सबसे बड़ा साधन है और ये समय का साधन हमसे छूटता जा रहा है। एक क्षण भी भगवान को छोड़कर दूसरी तरफ वस्तु में प्रेम करते हैं तो ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। साहानि साहानिस्तन महत छिद्रम साचांद जड़ मूढ़ता। इससे बड़ी दुनिया में कोई हानि नहीं, कोई घाटा नहीं। कोई मौत नहीं, कोई शोक का कारण नहीं। किसी के मरने पर शोक करते हो, कोई अर्थ आदि का घाटा लगता है, रुपया पैसे का घाटा लगता है, उसके लिए शोक करते हो, ये कोई घाटा है ही नहीं। घाटा तो यह है कि भगवान के साथ प्रेम करने के लिए हम आए थे, जिस समय में वो समय हमारे हाथ से जा रहा है, भगवान में प्रेम नहीं हो रहा है, इस बात को लेकर खूब रोना चाहिए। संत कहते रोना चाहिए, संत तो हंसाने के लिए होते हैं, कहते संत इस बात को लिए कहते रोना चाहिए, खूब अंतर मन से रोना चाहिए। भगवान में हमारा अनन्य प्रेम हो जाएगा। उसकी कसौटी क्या है? उसकी कसौटी यह है कि हर समय भगवान की स्मृति बनी रहती है। भगवान की स्मृति करनी नहीं पड़ेगी, अपने आप याद आएगी, वो स्वाभाविक याद आएगी। अभी आपको जैसे संसार स्वाभाविक याद आता है, इसकी जगह भगवान याद आएंगे। देखो संसार के पदार्थों में हमारी जो प्रीति है, ये मन भगवान को छोड़कर उन संसार की तरफ जाता है। इसको कोई पूछे कि क्यों जाता है, तो संसार में किसी पदार्थ का जो प्रभाव हमारे अंदर पड़ा हुआ है, इस कारण से जाता है। तो कैसे हटाए? तो इस मन के अंदर ये भावना रखो कि जो पदार्थ का प्रभाव है वो पदार्थ का नहीं, वो भगवान का है। जहां भी आपका मन जाए वहां आप ये देखो, ये प्रभाव भगवान का है, ये प्रभाव भगवान का है। क्योंकि भगवान ने कहा भी है कि संसार में जो भी बल है, तेज है, ज्ञान है, जो भी अच्छी चीज है, वो मेरा ही एक अंश मात्र है। यद्यद् विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। मेरा जो प्रभाव है उसका एक अंश है ये जगत पैदा हुआ है, और ये मेरे से पैदा होने वाले जगत में आप इतना प्रेम करते हो, तो आपको सोचना चाहिए कि जगत को बनाने वाला कितना हमारा प्रिय हो सकता है। जगत नाशवान चीज अवधि प्रिय है, तो अविनाशी हमारा कितना प्रिय होना चाहिए। भगवान को भी दुख होता है कि मेरे से पैदा हुए संसार से तो ये जीव प्रेम करता है और मेरे से प्रेम नहीं करता। भगवान का ही तो प्रभाव है कि ये संसार बना है। भगवान ने ये संसार जीव को अपनी तरफ खींचने के लिए बनाया था, और ये जीव संसार में आकर भगवान को छोड़ने का काम करने लग गया, उल्टा चलने लग गया। भगवान कहते हैं कि विष्टभ्याम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। तुमको ज्यादा जानने की जरूरत क्या है? सारा ब्रह्मांड मेरे एक अंश में है, तो मेरे से बाहर क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं। भगवान से बढ़कर कोई प्रभावशाली नहीं है, कोई गुणवान नहीं है, कोई शोभामान नहीं है, कोई सुंदरता नहीं है। हम संसार की तरफ किस लिए देख रहे हैं? संसार की चमक धमक सुंदरता उस पर लट्टू हो रहे हैं, इससे बढ़कर हमारी क्या मूर्खता है, बेसमझी है। ये बात हृदय में बैठनी चाहिए। भगवान में उसका अनन्य और विशुद्ध प्रेम हो जाने के बाद फिर देखो आपके जीवन में कितना आनंद आता है। भगवान की प्राप्ति अपने आप सुगमता से हो जाएगी, विलंब का काम ही नहीं है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। अनन्य चित्त वा पुरुष नित्य निरंतर मेरे स्वरूप का स्मरण करता है, यानी मेरा चिंतन करता है। उस नित्य युक्त योगी भक्त के लिए मैं सुलभ हूं, कोई परिश्रम का काम नहीं है। कितने ऊंचे दर्जे की बात है। जो मुझको अपने हृदय में बसा लेता है, मैं उसको हृदय में बसाता हूं। कल रात मैंने आपसे कहानी कही थी, भगवान ने ये बात रुक्मणी के प्रति कही थी कि देखो रुक्मणी जी, राधिका मेरे हृदय में बसती है और मैं राधिका जी के हृदय में बसता हूं। तो यह तो एक समझाने के लिए नाम दिया है, इसका अर्थ आप लोग ये मत समझना कि भगवान का तो भाई रुक्मणी जी के साथ प्रेम होगा, राधिका जी के साथ होगा, हमारे साथ थोड़े ही होगा। रुक्मणी जी और राधिका जी हमारे में से ही है, किसी न किसी का नाम लेकर तो बताया ही जाएगा, पर वो अपने सब के लिए है। ऐसा नहीं कि जो भगवान ने राधिका जी से प्रेम किया वो हमारे साथ नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं है। उनका हृदय बड़ा विशाल है। कोई भी भक्त भगवान का ध्यान करता है, भगवान के साथ प्रेम करता है, तो भगवान तो प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। इसलिए एकमात्र भगवान को ही अपना प्रिय मानना चाहिए, क्योंकि उसके समान दूसरा कोई हमारे साथ प्रेम करने वाला नहीं है।